हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। स्वीटी आदित्य के सामने वाले सोफे पर आकर बैठते हुए बोली। तो उसकी बात सुनकर आदित्य ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अरे तो क्यों उस बारे में इतना सोच रही है? और वैसे भी अब वो बार बार नहीं आएगा, और अगर आया भी तो इस बार मैं उसे कुछ भी नहीं देने वाला। हाँ भाई, बिल्कुल भी मत देना, वो सच में बहुत बेशरम है, और इस बार आप उन्हें सिक्योरिटी बुलाकर सीधा घर से बाहर निकलवा देना। स्वीती भी अपने मन में भरा गुस्सा निकालती हुई बोली। उसे गुस्से में देखकर आदित्य फिर से हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शांत शांत हो जा, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, और उन सब लोगों का लालच कभी भी खत्म नहीं होने वाला। हाँ भाई, मुझे भी पता है कि मम्मी पापा भाई सब कितने लालची हैं, और अब तो बुआ जी भी उन लोगों के साथ ही लगी हैं, ये सोचकर कि जब हिस्सा बटेगा तो उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत ही शर्मिंदगी होती है मुझे ये सोचकर कि मैं भी इस फैमिली से हूँ, लेकिन भाई मैं, स्वीटी बहुत ही मायूसी से बोली। तो आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तू क्यों बेवजह में गिल्ट ले रही है अपने ऊपर, और मुझे पता है तू कैसी है और बाकी सब कैसे हैं, सबको जानता हूँ मैं, कुछ बोलना नहीं तो क्या इन लोगों को लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? हाँ भाई, लेकिन ये लोग आपको अगर ज़्यादा परेशान करें तो फिर आप बिल्कुल भी मेरे बारे में या फैमिली रेप्यूटेशन के बारे में मत सोचना, और इन लोगों पर कैसे भी कर देना। कब से आप लोगों को परेशान करके रखा है। वैसे मुझे तो थोड़ा डर लगता है कि जब इन लोगों को पता चला कि सब कुछ भाभी के नाम हो गया है तो कहीं ये लोग उन्हें नुकसान। सुनैना के लिए स्वीटी अपनी फ़िक्र जाहिर करते हुए बोली। तो उसकी ये बात सुनकर आदित्य की भी दोनों आईब्रो आपस में मिल गईं और वो थोड़ा सा सच में पड़ गया। अरे हाँ, मैंने कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन स्वीटी सुनैना को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। पहले ही एक बार उसके साथ जो हादसा हुआ है उसका कॉन्सिक्वेंसेज वो अब तक झेल रही है और पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। मैं ऐसे में उसे एक खरोज भी नहीं आने दूंगा अब, और अगर किसी ने सुनैना को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सब कुछ याद करते हुए आदित्य बहुत ही गुस्से में भरकर बोला, हाँ भाई मुझे पता है, लेकिन भाभी की बीमारी और उनकी याददाश्त, अगर किसी ने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर पैसे हड़पने की या फिर अपने फ़ायदे का कोई काम करवाने की सोची तो मेरे मन में ऐसे ही कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मेरे मन में ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस बारे में किससे बात करूं, इसीलिए बस मैं अभी आपके साथ ये सब शेयर कर लिया। हाँ अच्छा किया, लेकिन इतना मत सोचो, जो तुम अपने कोर्स पर ध्यान दो। वैसे भी तुम्हारे कोर्स का फाइनल सेशन चल रहा है ना, मैं तो चाहता हूँ तुम बहुत जल्दी बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बन जाओ और ख़ुद को प्रूव करो, जिससे कि चाचा चाची और विशाल कोई भी तुम्हें कुछ ना बोल पाए, आदित्य ने जानबूझकर बात बदलते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर स्वीटी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ भाई बस आप और भाभी का साथ रहेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तो बड़ा अचीव कर ही लूँगी, और मैं चाहती हूँ कि भाभी बिल्कुल ठीक हो जाए और आप दोनों बिल्कुल पहले की तरह साथ रहें हमेशा। उसकी ये बात आदित्य को भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहता था। देर तक बात करने के बाद स्वीटी ने घड़ी की तरफ देखा तो उसके जाने का टाइम हो रहा था, तो वो आदित्य को बाय बोलकर वहाँ से चली गई। और गीता दी जब तक आदित्य के लिए कॉफ़ी लेकर आई तो आदित्य ने उन्हें अपने और सुनैना के लिए ब्रेकफास्ट बनाने को कहा, और अपनी कॉफ़ी पीते हुए वो वापस अपने रूम की तरफ चला गया सुनैना को देखने के लिए। अब तक सुबह के 8 बज चुके थे, और जब वो रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि सुनैना बेड पर नहीं थी और वॉशरूम से शावर की आवाज़ आ रही थी, तो वो समझ गया कि ज़रूर सुनैना बाथरूम में है, और वो टाइम से उठ गई, शायद उसने अपना अलार्म लगा कर रखा था। आदित्य उसके बारे में सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी कॉफ़ी पीते हुए वो वापस अपने कमरे की बालकनी में आ गया। सुनैना को पता नहीं था कि आदित्य रूम में वापस आ गया है, और वो अपने कपड़े लिए बिना ही नहाने के लिए चली गई थी, इसीलिए वो बाथरूम पहनकर खुले बालों में ही बाथरूम से बाहर निकली और बड़े ही आराम से ड्रायर उठाकर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगी। उस कमरे में कोई भी नहीं दिखा तो वो समझी आदित्य अभी तक वहाँ पर नहीं आया है, और इस बात पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी आदित्य की कॉफ़ी खत्म हो गई तो वो बालकनी से वापस अपने रूम में आया, और उसने अपने सामने जो नज़ारा देखा उसे देखकर तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, और वो सुनैना की वहीं खड़ा होकर पीछे मिरर से सुनैना की तरफ देखने लगा। उसे पीछे खड़े होकर शीशे में सुनैना का चेहरा नज़र आ रहा था, लेकिन सुनैना अपने आप में खोई हुई अपने बाल सुखाने और बनाने में बिजी थी, इसीलिए उसने पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि आदित्य अपने सामने का व्यू एंजॉय कर रहा था। और जैसे ही कुछ देर बाद सुनैना ने शीशे में देखा तो उसे अपने अलावा कोई और भी उसे मिरर में नज़र आया, तो वो एकदम ही चौंक गई और अपने बाथरूम को ठीक करके बंद करते हुए उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो और तुम रूम के अंदर कब आए? आदित्य वैसे तो उसे देखने में एकदम ही गुम था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर उसका ध्यान उसकी तरफ हुआ। आदित्य उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तो काफी देर से यहीं पर हूं, लेकिन तुम इस तरह से बाहर क्यों आई? मुझे सेड्यूस करना चाहती हो क्या? उसे इस तरह अपनी तरफ आते हुए देखा सुनैना एकदम ही हड़बड़ा गई और अपनी जगह से पीछे हटते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? रुको वहीं, मुझे लगा कि रूम में कोई नहीं है और इसीलिए मैं बस रेडी होने के लिए यहाँ। लेकिन सुनैना की बात सुनकर भी आदित्य अपनी जगह पर बिल्कुल नहीं रुका और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए बोला, मैं क्यों रुको वहां पर तुमसे दूर? आखिर अपनी वाइफ के पास ही तो आ रहा हूँ, और वैसे भी तुम इतनी हॉट लग रही हो इस लुक में कि क्या बताऊं मैं। उफ, वैसे आज से पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा कभी बाथरूम में। मुझे तो यही लगता था कि तुम्हें बाथरूम पसंद नहीं, लेकिन आज पता चला कि तुम क्यों नहीं पहनती हो, इतनी हॉट लगती हो इसमें। इतना सब बोलते हुए आदित्य अब तक उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो गया है और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल अपने एक हाथ से पीछे करते हुए आदित्य ने ऊपर से नीचे तक सुनैना की तरफ देखा और सुनैना ने दोबारा से अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए बाथरूम के खुले हुए हिस्से को कसकर इस तरह से पकड़ लिया जैसे कि उसे बिल्कुल बंद करने की कोशिश कर रही हो। उसे इस तरह से करते देख आदित्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसी तरह मुस्कुराते हुए वो आगे आया और अपना चेहरा सुनैना के चेहरे के एकदम ही नजदीक करने लगा। सुनैना उसके अचानक से की गई इस हरकत से एकदम हैरान हो गई, लेकिन उसने भी जल्दी तुरंत ही अपना चेहरा पीछे किया। लेकिन आदित्य फिर भी नहीं रुका और उसके चेहरे के एकदम पास अपना चेहरा लाते हुए उसने उसके कान में बोला, रिलैक्स होना, मुझे पता है अभी तुम्हारा एग्जाम है, इसीलिए अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और वैसे भी इतना क्या शर्माना और क्या छुपा रही हो? हमारे बीच ऐसी किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो मैं पहले ही
इतना बोलते हुए आदित्य ने उसके गाल पर किस करते हुए अपना चेहरा हल्के से पीछे किया और सुनैना एकदम हैरानी से उसकी बात का मतलब समझते हुए उसकी तरफ ही देखने लगी। तो आदित्य ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और उसे आंख मारते हुए तुरंत ही वहां से चला गया, जबकि सुनैना उसके जाने के कुछ देर बाद भी उसी तरह ट्रांस की सी हालत में खड़ी रही, क्योंकि उसे पता भी नहीं चला अभी अभी वहां पर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उसे अपने दिल की धड़कनें इतनी तेज सुनाई दे रही थीं जैसे कि उसका दिल 10 गुना तेजी से धड़क रहा हो। आदित्य का प्यार उसके लिए वो अभी भी महसूस कर पा रही थी, लेकिन बस उसे कुछ भी याद नहीं था उन दोनों के बीच बीते हुए ये पल। इसलिए आदित्य ने जैसे ही ये बात बोली तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन फिर भी वो उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। आदित्य ने दरवाजे के पास जाकर एक बार फिर से पीछे मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हमारा प्यार मेमोरी, याददाश्त और दिमाग से परे है। हमारा दिल का और रूह का रिश्ता है सोना, जो किसी भी याददाश्त के जाने से मिट नहीं सकता। और ये प्यार अपने लिए मुझे तुम्हारी आंखों में भी नजर आता है। भले ही तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे पता है तुम अभी भी वैसे ही रिएक्ट करती हो मेरी नज़दीकी पर जैसे कि हमेशा करती थी। अपने आप से ये सब बात करते हुए आदित्य तसल्ली से मुस्कुराया और फिर वहां से बाहर निकल गया। और कुछ देर के बाद फिर वो दोनों ही रेडी होकर वहां से कॉलेज के लिए निकल गए। लेकिन वहां से निकलने से पहले सुनैना ने आदित्य से साथ आने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी आदित्य नहीं माना और उसने कहा कि सुनैना जैसी हालत में है वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाला, और कॉलेज जैसी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं।